संबंध। 11वें, 12वें और 13वें श्लोक में क्रमशः सात्विक, राजस और तामस यज्ञ का वर्णन करके अब आगे के 3 श्लोकों में क्रमशः शारीरिक, वाचिक और मानसिक तप का वर्णन करते हैं, जिसका सात्विक, राजस और तामस भेद आगे करेंगे।
देवाद्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्य महिंसा च शारीरं तपोच्यते।
देवता, ब्राह्मण, गुरुजन और जीवन मुक्त महापुरुष का यथा योग्य पूजन करना, शुद्धि रखना, सरलता, ब्रह्मचर्य का पालन करना और हिंसा न करना, यह शरीर संबंधी तप कहा जाता है। व्याख्या। देवद्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम, या देव शब्द मुख्य रूप से विष्णु, शंकर, गणेश, शक्ति और सूर्य, इन 5 ईश्वर कोटि के देवताओं के लिए आया है। इन 5ों में जो अपना इष्ट है, जिस पर अधिक श्रद्धा है, उसका निष्काम भाव से पूजन करना चाहिए। 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र और 2 अश्विनी कुमार, ये 33 शास्त्रोक्त देवता भी देव शब्द के अंतर्गत आते हैं। यज्ञ, तीर्थ, व्रत आदि में, दीप मालिका आदि विशेष पर्वों में, और जात कर्म, चूड़ा कर्म, यज्ञोपवीत, विवाह आदि संस्कारों के समय जिन देवताओं के पूजन का शास्त्रों में विधान है, उन सब देवताओं को भी देव शब्द के अंतर्गत मानना चाहिए। इन देवताओं का यथावसर पूजन करने के लिए शास्त्रों की आज्ञा है। अतः हमें तो केवल शास्त्र मर्यादा को सुरक्षित रखने के लिए अपना कर्तव्य समझकर निष्काम भाव से इनका पूजन करना है। ऐसे भाव से इन देवताओं का भी यथावसर पूजन करना चाहिए। तात्पर्य है कि शास्त्रों ने जिन जिन तिथि, वार, नक्षत्र आदि के दिन जिन जिन देवताओं का पूजन करने का विधान बताया है, उन उन तिथि आदि के दिन उन उन देवताओं का पूजन करना चाहिए। द्विज, द्विज शब्द यहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों का वाचक है, परंतु यहाँ पूजन का विषय होने से इसे केवल ब्राह्मण का ही वाचक समझना चाहिए, क्षत्रिय और वैश्य का नहीं। जिनसे हमें शिक्षा प्राप्त होती है, ऐसे हमारे माता पिता, बड़े बूढ़े, कुल के आचार्य, पढ़ाने वाले अध्यापक और आश्रम अवस्था, विद्या आदि में जो हमसे बड़े हैं, उन सभी को गुरु शब्द के अंतर्गत समझना चाहिए। द्विज माने ब्राह्मण एवं अपने माता पिता, आचार्य आदि गुरुजनों की आज्ञा का पालन करना, उनकी सेवा करना और उनकी प्रसन्नता प्राप्त करना, तथा पत्र, पुष्प, आरती आदि से उनकी पूजा करना, ये सब उनका पूजन है। यहाँ प्राज्ञ शब्द जीवन मुक्त महापुरुष के लिए आया है। यदि वह वर्ण और आश्रम में ऊंचा है तो द्विज पद में आ जाता, और यदि शरीर के संबंध में बड़ा होता तो गुरु पद में आ जाता। इसलिए जो वर्ण और आश्रम में ऊंचा नहीं है एवं जिसके साथ गुरु का संबंध नहीं है, ऐसे तत्वज्ञ महापुरुष को यहाँ प्राज्ञ कहा गया है। ऐसे जीवन मुक्त महापुरुष के वचनों का, सिद्धांतों का आदर करते हुए उनके अनुसार अपना जीवन बनाना ही वास्तव में उसका पूजन है। वास्तव में देखा जाए तो द्विज और गुरु तो सांसारिक दृष्टि से आदरणीय है, पूजनीय है, परंतु प्राज्ञ तो आध्यात्मिक दृष्टि से आदरणीय है, पूजनीय है। अतः जीवन मुक्त का हृदय से आदर करना चाहिए, क्योंकि केवल बाहरी आदर ही आदर नहीं होता, प्रत्युत हृदय का आदर ही वास्तविक आदर है, पूजन है। शौचम, जल मृत्तिका आदि से शरीर को पवित्र बनाने का नाम शौच है। शारीरिक शुद्धि से अंतःकरण की शुद्धि होती है। शौचात स्वांग जुगुप्सा परैर संसर्ग है। शौच से अपने शरीर में घृणा होगी तो हम इस शरीर को रात दिन इतना साफ करते हैं, फिर भी इससे मलमूत्र, पसीना, नाक का कफ, आंख और कान के मैल, लार, थूक आदि निकलते रहते हैं। यह शरीर हड्डी, मांस, मज्जा आदि घृणित अपवित्र चीजों का बना हुआ है। इसमें हड्डी मांस के थैले में तोला भर भी कोई शुद्ध, पवित्र, निर्मल और सुगंध युक्त वस्तु नहीं है। कुल मिलाकर यह शरीर केवल गंदगी का पात्र है। इसमें केवल मलिनता ही मलिनता भरी पड़ी है। यह केवल मलमूत्र पैदा करने की एक फैक्ट्री है, मशीन है। इस प्रकार शरीर की अशुद्धि मलिनता का ज्ञान होने से मनुष्य शरीर से ऊंचा उठ जाता है। शरीर से ऊंचा उठने पर उसको वर्ण आश्रम अवस्था आदि को लेकर अपने में बड़प्पन का अभिमान नहीं होता। इन्हीं बातों के लिए शौच रखा जाता है। आजकल प्राय लोग कहते हैं कि जो शौचाचार रखते हैं वे तो दूसरों का अपमान करते हैं, दूसरों से घृणा करते हैं। ऐसा कहना बिल्कुल गलत है, क्योंकि शौच का फल ये नहीं बताया है कि तुम दूसरों का तिरस्कार करो, प्रत्युत यह बताया गया है कि इससे दूसरों के साथ संसर्ग नहीं होता, परैर संसर्ग है। तात्पर्य यह है कि शरीर मात्र से ग्लानि हो जाएगी कि ये सब पुतले ऐसे ही अशुद्धि अशुद्ध हैं, जैसे मिट्टी के ढेले को जल से धोते चले जाएं तो अंत में सब गलकर समाप्त हो जाएगा, पर उसमें मिट्टी के सिवाय कोई बढ़िया चीज नहीं मिलेगी। ऐसे ही शरीर को कितना ही शुद्ध करते रहो पर वह कभी शुद्ध होगा ही नहीं, क्योंकि इसके मूल में ही अशुद्धि है। स्थानात बीजात उपस्तंभान निस्यंदान निधनादपि काय माधेय शोचत्वात् पंडिता यशुचिम विदुः। योग दर्शन का दूसरे पाद का पांचवा सूत्र का व्यास भाष्य है। विद्वान लोग शरीर को स्थान माने माता के उदर में स्थित, दूसरा बीज माने माता पिता के रजो वीर्य से उद्भूत, उपस्तंभ माने खाए पिए हुए आहार के रस से परिपुष्ट, निस्यंदात माने मलमूत्र, थूक, लार, स्वेद आदि श्रावयुक्त, निधनात माने मरण धर्मा, और आधेय शौचात माने जल मृत्तिका आदि से प्रक्षालित करने योग्य होने के कारण ये अपवित्र माना गया है। आर्जवम, शरीर को ऐठ अकड़ का त्याग करके उठने बैठने आदि शारीरिक क्रियाओं को सीधी सरलता से करने का नाम आर्जव है। अभिमान आदि कोने से ही शरीर में टेढ़ापन आता है। अतः जो अपना कल्याण चाहता है ऐसे साधक को अपने में अभिमान नहीं रखना चाहिए। निराभिमानता होने से शरीर में और शरीर के चलने, उठने, बैठने, बोलने, देखने आदि सभी क्रियाओं में स्वाभाविक ही सरलता आ जाती है, जो आर्जव है। ब्रह्मचर्यम्। ये आठ क्रियाएं ब्रह्मचर्य को भंग करने वाली हैं। पहला, पहले कभी स्त्री संग किया है उसको याद करना। दूसरा, स्त्रियों से राग पूर्वक बातें करना। तीसरा, स्त्रियों के साथ हंसी दिल लगी करना। चौथा, स्त्रियों की तरफ राग पूर्वक देखना। पांचवा, स्त्रियों के साथ एकांत में बातें करना। छठा, मन में स्त्री संघ का संकल्प करना। सातवां, स्त्री संघ का पक्का विचार करना। और आठवां, साक्षात स्त्री संघ करना। ये आठ प्रकार के मैथुन विद्वानों ने बताए हैं। स्मरणम कीर्तनम केलि प्रेक्षणम गुह्य भाषणम संकल्पोद्यवसायश्च क्रिया निष्पत्तिरेव च एतन् मैथुन नमस्तांगम प्रवदन्ति मनीषिण विपरीतम ब्रह्मचर्यम अनुष्ठेयम् मुमुक्षुभिः। इनमें से कोई भी क्रिया न हो उसका नाम ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यासी, इन तीनों का तो बिल्कुल ही वीर्यपात नहीं होना चाहिए और न ऐसा संकल्प ही होना चाहिए। गृहस्थ केवल संतान के लिए शास्त्र विधि के अनुसार ऋतुकाल में स्त्री संग करता है तो वह गृहस्थ आश्रम में रहता हुआ भी ब्रह्मचारी माना जाता है। विधवाओं के विषय में भी ऐसी बात आती है कि जो स्त्री अपने पति के रहते प्रतिव्रत धर्म का पालन करती रही और पति के मृत्यु के बाद ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करती रही, उस विधवा की वही गति होती है जो आबाल ब्रह्मचारी की होती है। वास्तव में तो ब्रह्मचारी व्रते स्थित है। छठे अध्याय का चौदहवां श्लोक, ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित रहना ही ब्रह्मचर्य है। परंतु इसमें भी यदि स्वप्न दोष हो जाए अथवा प्रमेय आदि शरीर की खराबी से वीर्यपात हो जाए तो उसे ब्रह्मचर्य भंग नहीं माना गया है। भीतर के भावों में गड़बड़ी आने से जो वीर्यपात आदि होते हैं वही ब्रह्मचर्य भंग माना गया है। कारण कि ब्रह्मचर्य का भावों के साथ संबंध है, इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले को चाहिए कि अपने भाव शुद्ध रखने के लिए वह अपने मन को परिस्त्री की तरफ कभी जाने ही न दे। सावधानी रखने पर भी यदि कभी मन चला भी जाए तो भीतर में ये दृढ़ विचार रखे कि अरे ये काम मेरा नहीं है, मैं ये काम कभी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं ब्रह्मचर्य पालन करने वाला हूं। मैंने पक्का विचार कर रखा है, मैं ऐसा काम कैसे कर सकता हूं। अहिंसा, सभी प्रकार की हिंसा का अभाव अहिंसा है। हिंसा स्वार्थ क्रोध लोभ और मोह को लेकर होती है। जैसे अपने स्वार्थ में आकर किसी का धन दबा लिया, दूसरों का नुकसान करा दिया, तो ये स्वार्थ को लेकर हिंसा है। क्रोध में आकर किसी को थोड़ी चोट पहुंचाई या ज्यादा चोट पहुंचाई या उसको मार ही दिया तो यह क्रोध को लेकर हिंसा है। ऐसी चमड़ा मिलेगा, मांस मिलेगा, इसके लिए किसी पशु को मार दिया अथवा धन के कारण किसी को मार दिया तो ये लोभ को लेकर हिंसा है। रास्ते चलते चलते किसी कुत्ते को लाठी मार दी, वृक्ष की डाली तोड़ दी, किसी घास को ही उखाड़ दिया, किसी को ठोकर मार दी, तो इसमें कोई क्रोध तो नहीं है, कोई लोभ भी नहीं है और न कुछ मिलने की संभावना ही है, तो ये मूढ़ता को लेकर की गई हिंसा है। अहिंसा में इन सभी हिंसाओं का अभाव होता है। शारीरम तप उच्यते, देवादि का पूजन, शौच, आर्जव, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, ये पांच प्रकार का शारीरिक तप है। इन शारीरिक तप में तीर्थ, व्रत, संयम आदि भी ले लेने चाहिए। जब कष्ट उठाना पड़ता है, तपन होती है, तब वह तप होता है। परंतु उपर्युक्त शारीरिक तप में तो ऐसी कोई बात नहीं है। फिर ये तप किस प्रकार से हुआ? कष्ट उठाकर जो तप किया जाता है वह वास्तव में श्रेष्ठ कोटि का तप नहीं है। तप में कष्ट की मुख्यता रखने वालों को भगवान ने आसुर निश्चयान 17वें अध्याय के 6वें श्लोक में असुर निश्चय वाला कहा है। तप तो वही श्रेष्ठ है जिसमें उच्छृंखल वृत्तियों को रोककर शास्त्र, कुल परंपरा और लोक परंपरा की मर्यादा के अनुसार संयम पूर्वक चलना होता है। ऐसे ही साधन करते हुए स्वाभाविक ही देश, काल, परिस्थिति, घटना आदि आदि अपने विपरीत कोई आ जाए तो उनको साधन सिद्धि के लिए प्रसन्नता पूर्वक सहना भी तप है। इस तप में शरीर, इंद्रिय, मन आदि का संयम होता है। अष्टांग योग में जहां यम, नियम आदि 8 अंगों का वर्णन किया गया है, वहां यम को सबसे पहले बताया है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधयो अष्टावंगानि, पातंजलि योग दर्शन 2 पाद 29वां सूत्र। यद्यपि 5 ही यम है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये 5 यम है और 5 ही नियम है। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। यद्यपि इन दोनों में से नियम की अपेक्षा यम की ज्यादा महिमा है, कारण कि नियम में व्रतों का पालन करना पड़ता है और यम में इंद्रियों, मन आदि का संयम करना पड़ता है। हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष, रावण आदि राक्षसों में भी नियम तो मिलते हैं पर उनमें यम नहीं मिलते। लोगों की दृष्टि में ये बात हो सकती है कि शरीर को कष्ट देना तप है और आराम से रहकर संयम करना, त्याग करना तप नहीं है। परंतु वास्तव में देखा जाए तो समस्त शारीरिक विषयों में अनासक्त होकर जो संयम, त्याग किया जाता है वो तप से कम नहीं होता, प्रत्युत पारमार्थिक मार्ग में उसका दर्जा ऊंचाई माना गया है। कारण कि त्याग से परमात्मा की प्राप्ति होती है। त्यागात शांतिरनन्तरम्, केवल बाहरी तप से परमात्मा की प्राप्ति नहीं बताई गई किंतु अंतःकरण की शुद्धि का कारण होने से वह तप परमात्मा की प्राप्ति में सहायक हो सकता है। इसलिए साधक को मुख्य रूप से यमों का सेवन करते हुए समय समय पर नियमों का भी पालन करते रहना चाहिए। परिशिष्ट भाव, शारीरिक तप में त्याग मुख्य है। जैसे पूजन करने में अपने में बड़प्पन के भाव का त्याग है, शुद्धि रखने में आलस्य प्रमाद का त्याग है, सरलता रखने में अभिमान का त्याग है, ब्रह्मचर्य में विषय सुख का त्याग है, अहिंसा में अपने सुख के भाव का त्याग है। इस प्रकार त्याग करने से शारीरिक तप होता है।